जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभु पदा प्रभुपदा जय प्रभु पदा, जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद,
श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर की की, श्री वृंदावन धाम की, श्री रमन रीति धाम की, श्री बरा घाट की, श्री यमुना देवी की जय, जय श्री राधे श्याम। फोन हरे कृष्णा। जो आज 28 अगस्त है 2018, 26 अगस्त को 2010 को हमारे भक्तिवेदांत हॉस्पिस का उद्घाटन हुआ था, उसमें से अभी कितने लोग हैं इधर? बाकी सब लोग नए हैं। हाँ, उसके बाद में आप आए। समय ऐसी चीज है जो हर चीज़ को बदल देती है। जो तब थे वो अभी नहीं हैं, जो है वो तभी नहीं थे, ये तो होते रहता है। लेकिन जो कहते हैं ना मिशन, दिव्य मिशन जो होता है ना, वो चलते रहता है। बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे जाते हैं, लेकिन वो जिस उद्देश्य से लेकर चले हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। अभी प्रभुपाद जी भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनकी संस्था, उनका मिशन चल रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनका मिशन क्या था, जब वो हिप्पी लोगों के होते हुए वहाँ पहुँचे थे, है ना, जो नशा करते थे, चरस गांजा गर्द अफीम और LSD, ऐसे बहुत सारे नशा करते थे, नंगा घूमते थे, नंगे रहते थे, ऐसा एक क्लब था उनका। ऐसे भयंकर जीवन के स्थिति से प्रभुपाद जी ने उनको ऊपर उठाया। वो ऐसे नशा करते थे कि कभी कभी चार चार नशा एक साथ में करते थे, व्यभिचार करते थे, जैसे कुत्ता बिल्ली होते ना वैसे रहते थे। मांसाहार तो कुछ पूछो ही मत, सब चीज खाते थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, ऐसा घिलौना काम। 1960 की बात कर रहा हूँ, आज तो उससे भी घिलौने हो गए वो। उस समय नशा प्रधान था उनके जीवन में, वो नशा को उन्होंने प्रभुपाद जी के शरण लेकर छोड़ दिया। हम लोग यकीन नहीं कर सकते कि एक शुद्ध भक्त के संग में आने से क्या परिवर्तन हो सकता है। नामुमकिन चीज़ भी हो सकती है। जो लोग परिवार को छोड़ चुके हैं, अपने घरदार को छोड़ चुके हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, जंगल में रह रहे हैं, जानवरों की तरह रह रहे हैं, नशा करके कुछ ऊंचा ऊंचा अनुभव लेने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने प्रभुपाद जी के संपर्क में आकर जब उनका बात सुनी, उनकी बातों को सुना और धीरे धीरे उसको जीवन में उतारना शुरू किया, तो उनका जो नामुमकिन था वो सब छूट गया, उनका नशा भी छूट गया और व्यभिचार भी छूट गया, शुद्ध आहार हो गया उनका और नशा छूट गई, सब छूट गया उनका, एक पवित्र जीवन जीने लगे। और यहाँ तक कि वो पवित्र जीवन इतना ऊंचा उठा कि वो ब्राह्मण के स्तर पर पहुंच गए और भगवान के विग्रहों की पूजा करने लगे। मैं जब विदेश गया था ना, ये हॉस्पिस को पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड अमेरिका में गया था, तो वहाँ के इस्कॉन के मंदिर में मैंने एक पूरे काले ठिकर व्यक्ति को भगवान का पूजा करते हुए देखा, अफ्रीकन व्यक्ति को। मुझे इतना गौरव हुआ प्रभुपाद जी के ऊपर, इतना मुझे गर्व हुआ कि देखो क्या, कहाँ से आया है व्यक्ति, ये क्या करता था पहले, आज भगवान के सामने खड़े होकर विग्रहों को, स्थापित विग्रहों की पूजा कर रहे हैं और दिन रात। ऐसे भी क्यों नहीं कि हजारों भक्त हैं और उसमें से वो भी एक है, ऐसा नहीं, कुछ गिने चुने भक्त हैं उसमें से एक, वो दिन रात भगवान की पूजा कर रहे हैं, 6 बार भोग लगाता है, 6 बार आरती करता है, उसी में लीन रहता है वो। कहाँ नशा करते हुए, वो अफ्रीका के लोग तो पता है ना आपको, वो ड्रग लेने में बहुत एक्सपर्ट है, वो ड्रग का स्मगलिंग भी करते हैं और दुनिया को भी देते हैं और खुद भी लेते हैं। ऐसे समाज में से को कोई कल्चर नहीं है, कोई व्यवहार का तरीका नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। एक विदेशी पत्रकार ने उनको पूछा, महाराज आप इंडिया से आए हैं, जो भी इंडिया से आते हैं वो कुछ चमत्कार दिखाते हैं, कोई आकाश से विभूति निकालता है, कोई सोने की घड़ी निकालता है, कोई किसी को हाथ लगाकर कैंसर ठीक कर देता है, आपका चमत्कार क्या है? तो ऐसे उस तरफ कोई ऐसे 2-4, 10-15 भक्त बैठे हुए थे, उसमें कुछ लड़कियां भी थी, कुछ लड़के भी थे विदेशी सब, तो उनकी ओर हाथ दिखाया उन्होंने, बोला ये देखो ये लोग सब नशा जुआ व्यभिचार सब मांसाहार गलत काम करने वाले थे, सब लोग परिवारहीन थे, संस्कारहीन थे, ये आज ब्राह्मण बन गए, भगवान का नाम ले रहे हैं। ये परिवर्तन जो है ये बड़ा चमत्कार है कि हवा से विभूति निकालना चमत्कार है? हवा से विभूति निकाला तो आप बहुत प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन प्रभावित होने से आपका क्या लाभ होगा उसमें? मैं ही ग्रेट हूं, मैंने हवा से विभूति निकाल के आपको दिया, आपको क्या लाभ है उसका? आपके जीवन में परिवर्तन कब आएगा? तो सही चमत्कार है परिवर्तन, बुरे चीजों से अच्छी चीजों की तरफ परिवर्तन, घिलौने दर्जे से लेकर उच्च दर्जे तक परिवर्तन, वो सबसे बड़ा चमत्कार है, हृदय परिवर्तन। प्रभुपाद जी ने यही चाहा था कि आई वॉन्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे हृदय परिवर्तन चाहिए, और उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में किया। 500 कोटि किताबें उनकी आज तक वितरित हो गई हैं, 500 कोटि, उतने लोगों के घर में वो किताबें पहुंच चुकी हैं, बहुतों ने पढ़ी है, और आगे वो टाइम बम की तरह काम करेगी और अपना असर दिखाएगी। तो प्रभुपाद जी ने जन्म से लेकर अंत तक लोगों के जीवन को सहारा देने का प्रयास किया। जन्म से कैसे? जन्म भक्त के घर में होना चाहिए, और जन्म से ही, जैसे मेरी बालिकाएं हैं 2, वो गर्भ से ही कभी उन्होंने एकादशी थोड़ा नहीं, जन्म गर्भ से ही उन्होंने एकादशी रखा है, क्योंकि माता रखती थी एकादशी। गर्भ से ही उन्होंने कभी लहसुन प्याज चाय कॉफी का सेवन नहीं किया है, तो गर्भ से ही उद्धार, जन्म होते ही, होते होते ही संस्कार करके भगवान का नाम लेते लेते ही बाहर आ गए वो, और भक्तों के घर में ही, मतलब परिवार में ही उनका संस्कार हुआ है। हम लोग तो सब घर में 20 साल सब कुछ करके बाद में भक्त बने, लेकिन वो हमारे बच्चे जो है वो 1 नंबर के दिन से ही भक्त बने हुए। फिर उनकी विवाह किया उन्होंने, पब्लिक में विवाह किया, क्रॉस मैदान पे विवाह किया, मतलब लोगों का पब्लिक मैरिज दिखाया कि कैसे भक्त लोग शादी करते हैं और कैसे जीना चाहिए उनको, पति पत्नी को कैसे जीना चाहिए। इतना डिवोर्स रेट तभी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको संस्कार दिया। वो कहते थे डिवोर्स इज अ नॉनसेंस ट्रेडिशन. डिवोर्स देना मतलब वो एक बहुत घटिया तरीका है. सच्चा इंसान डिवोर्स देता नहीं है. क्या कहते हैं उसको? तलाक, घटस्फोट कहते हैं मराठी में. और बाद में फिर अंतिम समय पर क्या करना है उसका भी व्यवस्था किया उन्होंने. अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या दिया है, क्या दे पाते हैं वो, क्या दे पाते हैं बेचारे, उनके सामने ऐसे लोग खड़े थे उनको क्या दे सकते थे वो. ऐसे मुझे कई लोगों ने बताया है, अच्छे मित्र है मेरे वो. उनको लगता है कि अरे प्रभुपाद जी इतने ऊंचे भक्त थे लेकिन उनके सामने जो विद्यार्थी थे वो इतने लो लेवल के थे कि उनको क्या दे पाएंगे. समझो अभी मेरे पास समझो 2000 लीटर घी है समझो, और आप सब लोग 150 ml का एक एक कप लेके आए, तो कितना दूंगा आपको मैं? 150 ही दूंगा ना. तो ऐसे उनको उनका कहना था कि जो विद्यार्थी थे वो इतने से पात्र लेकर आए थे, क्या देते प्रभुपाद जी उनको? वो तो खुद महान थे लेकिन प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, हर चीज. जैसे वो महाराज जी अभी यहाँ पर एडमिट है ना, मैं सुबह उनको बता रहा था कि प्रभुपाद जी ने जो बनाया ना उसी में आप अभी पड़े हो. उन्होंने जो भी कुछ खड़ा किया है, जो भी कुछ प्रस्तुत किया है, उसकी छत्रछाया में आप हो. चाहे आपके पास अभी 1 रुपया भी नहीं है देने के लिए किसी को, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा के छत्रछाया के आप अंदर सुरक्षित हो. भक्त लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, भक्त लोग आपके लिए खर्चा कर रहे हैं, भक्त लोग आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, फूल की तरह रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपके गुरु भाई प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पर आकर कर रहे हैं, हर तरह से आपके लिए सपोर्ट है. यही कृपा है प्रभुपाद जी की. मैंने उनको पूछा क्या आपकी इच्छा है, क्या कुछ इच्छा बाकी है, आपको कुछ करना है? बोले केवल एक ही इच्छा बाकी है कि अंत समय में राधा कृष्ण और प्रभुपाद जी की याद आए, बस यही इच्छा है. और आगे कहा कि मुझे प्रभुपाद जी की कृपा चाहिए. कहते मैं बहुत पतित जीव हूँ, मुझे कृपा चाहिए. मैंने कहा इतने भक्त लोग आ रहे हैं आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके गुरु भाई कर रहे हैं, शाम को कीर्तन किया जा रहा है, यही प्रभुपाद जी की कृपा है जिससे आप लिप्त हो, जैसे चारों तरफ से घिरे हो प्रभुपाद जी की कृपा में. जैसे एक बालक अपनी माता के गोद में कैसे होता है, हर तरफ सुरक्षित होता है, उसकी सारी देखभाल माता करती है ना, क्योंकि कुछ पूछना पड़ता है क्या? बिना एप्लीकेशन दिए सारे काम हो जाते हैं उसके. उन्होंने कहा बात सही है ये. तो इसलिए जो प्रभुपाद जी ने जो किया है ना, ऐसा नहीं कि मैं उनकी संस्था में हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है. इतना उन्होंने विश्व भर में ये सब व्यवस्था करके रखी है, ये देश में नहीं किया खाली, उनके खाली यहाँ पर काम नहीं है, पूरे विश्व में उनका काम है. और विशेष बात उनकी ये है कि वो चले गए अभी कितने साल हो गए उसको, कितने साल हो गए? 41 ईयर हो गए है ना. लेकिन जब थे वो तो जितना कार्य हुआ उससे 6 गुना कार्य उनके जाने के बाद में हुआ है. और आमतौर पर दुनिया में जो भी महान आचार्य होता है जब वो होता है तो बहुत सारा प्रचार और बहुत सारा उसका यश सब जगह गाया जाता है. जैसे ही महान आचार्य की मृत्यु होती है वो संस्था जो है वो टूट जाती है और सब लोग भूल जाते हैं और आगे कुछ नहीं होता, सब संस्था वही समाप्त हो जाती है. उसी के जीवन के काल में जब अंत होता है सब कुछ समाप्त हो जाता है. इनका फॉर्मूला ऐसा है कि वो जब चले गए तो उन्होंने एक समझो एक काम किया था, तो जाने के बाद में 6 गुना काम हो गए उनके. 1 गुना काम किया था तो 6 गुना काम हो गए. 108 मंदिर बना के गए थे, अभी 652 मंदिर हैं. सोचो आप, जाते वक्त 11 शिष्यों को गुरु बनाकर छोड़ गए थे, अभी 110 व्यक्ति गुरु हो गए हैं, वो शिष्य दे रहे हैं. अभी वो क्या बताऊँ, हमारे इस्कॉन में भी गुरुओं की कमी है. लोग इतने भक्त बन रहे हैं कि उनको गुरु बनने के लिए लोग नहीं, अवेलेबल नहीं, गुरु कम है, शिष्य लोग वेटिंग में हैं, कब दीक्षा मिलेगी, कब दीक्षा मिलेगी. इसलिए जब मैं विद्यार्थी दशा में इसमें आया था, अभी उसको आकर 35 साल हो गए, कभी मुझे लगा नहीं अरे किधर फंस गया मैं आके, इधर छोड़ के जाता हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर हूँ मैं, कोई कभी भी कहाँ पर भी बैठ सकता हूँ आराम से, कोई परेशानी नहीं है. लेकिन आज भी टिका हुआ हूँ इसी कारण, क्योंकि दिन ब दिन मुझे प्रभुपाद जी की जो कृपा है उसको मैं अधिक और अधिक समझ रहा हूँ कि कैसे उनकी कृपा कितनी गहराई में, कितने विस्तार में सब जगह प्राप्त है। और जो भी उनको अपने आप को जोड़ लेता है उसका वही कल्याण होता है जो बाकी लोगों का हुआ है। और कुछ लोगों का कल्याण क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो उनके द्वारा दिए गए नियम का पालन नहीं करते। पूरी तरह समर्पण का मतलब क्या है? जो जो उन्होंने दिया है वो सब फॉलो करना चाहिए, तो उनकी छत्रछाया में आ जाते हैं आप। लेकिन आधा कदम बाहर आधा कदम अंदर रखेंगे तो उनके पास जुड़ने के बाद भी आपको लाभ नहीं होगा। ये समझने की बात है। कुछ लोग बोलेंगे अरे हम तो जुड़े हुए हैं उनसे, यहाँ कहीं कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, हमारा तो कल्याण नहीं हो रहा है क्योंकि आपने उनके द्वारा दिए गए नियमों का पूरा पालन नहीं किया है, उनका पूरा शरण ग्रहण नहीं किया है। पूरा शरण ग्रहण करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा आपको। कुछ भी नहीं अवकन आपका तभी आपका सब कुछ किया जाएगा। जैसे बालक का क्या होता है, बालक के पास क्या पैसे होते हैं, क्या नौकरी करता है बालक 9 से 5 तक, क्या नौकरी कहीं 8 घंटे काम करता है, ओवर टाइम करता है, तब माँ उसको खिलाती है क्या? कुछ भी रहता नहीं उसके पास, फिर भी माँ उसका पूरा कल्याण करती है, सब संभालती है। क्योंकि क्या बालक का गुण क्या है, बालक माता के लिए 100% शरणागत होता है, अपने आप को पूरी तरह शरण ग्रहण करता है, आश्रय माता का ग्रहण करता है वो। इसलिए वो माता उसका पूरा कल्याण कर देती है। जब बड़ा होता है और शरारती करता है, माता की बात नहीं मानता है, तो आप क्या करते हैं? क्या कर सकते हैं? जाके उधर पेंसिल चोरी करता है, उधर वाकई उसके किसके को चोरी करके आता है, तो मैं कितना समझाऊं, मैं तो थक गई, अभी मैं तो इसको भी कुछ नहीं कर सकती, ऐसा बोलते ना आप लोग कभी? क्यों? क्योंकि आपकी शरण वो बालक ने छोड़ दिया है, मतलब अभी पूरा शरण नहीं आपके, वो खाली भोजन के लिए घर पे आता है, बस पैसा दो, मोबाइल दो, ये दो ये दो, इसके लिए आता है, बाकी आपका नियम नहीं मानता है वो। तो उसका कल्याण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बड़े राजा का बेटा भी होगा ना, जब तक वो बाबा को एस सर बोलेगा तभी अगला जाके राजा बनेगा वो। राजा का बेटा होने पर भी, अगर राजा का बेटा होने पर राजा का बात नहीं मानेगा तो अगला राजा उसको नहीं बनाएगा, किसी और को बनाएगा। कितना इतिहास है हमारा ऐसा। तो शरणागति बहुत जरूरत है। प्रभुपाद जी के आंदोलन में अगर अपने आप को कल्याण प्राप्त करना है तो शरणागति बहुत जरूरी है। तो ऐसे हम लोग ना वृंदावन में आते थे, यही तो परिक्रमा रास्ता है ना, अभी तो बहुत चौड़ा हो गया, अभी तो पहला मट्टी वाला था, छोटा सा था, हम लोग परिक्रमा करते थे, थोड़ा पानी देना, हम लोग परिक्रमा करते थे और शुरुआत हम लोग इस्कॉन से ही करते थे क्योंकि इधर ही इस्कॉन मंदिर है, वहीं से आते थे। हर बार घूमते थे, देखते थे अरे कितनी बढ़िया जगह है, एक खंडहर जैसी थी, कुछ ईंटों का टुकड़े पड़े थे, कुछ ऐसे आधा टूटा हुआ दीवार था, कुछ झाड़ थे, ऐसे पेड़ थे, हम देखते थे अरे कितनी बढ़िया जगह है, खाली पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, और जाते थे आगे निकल के। कभी कभी ऐसा मन में विचार करता था अरे इतनी बढ़िया जगह है, कभी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, इतनी मौके की जगह है, ऐसा सोच के चले जाते थे। लेकिन पता नहीं था हमको कि एक दिन हम लोग यहाँ आकर बैठ जाएंगे, पता नहीं था हमको उस समय। ये भूमि जो है ना, ये राधा रमन के गोसाई लोगों की भूमि है। इधर वो आकर जमुना किनारे एकांत भजन करते थे, जैसे कि विश्वंभर गोस्वामी, वो हमारे प्रभुपाद जी के मित्र थे, प्रभुपाद जी के गुरु जी के मित्र भी थे, प्रभुपाद जी के गुरु जी के पिताजी के भी मित्र थे, उनका परिवार बुला, उनके पास नोट्स है पूरे, उनके घर में आए, रुके, प्रसाद पाया, लेक्चर दिया लाला बाबू मंदिर में, उधर बहुत भीड़ हो गई उनका चरण छूने के लिए, पुलिस आई, फिर लाइन लगाई और चरण छुए, ऐसे बहुत सारे उनके नोट्स है, लिखे रखे उन्होंने, उनके घर में संत आए तो उन्होंने लिखा रखा है, और हमको दिखाया उन्होंने ये सब डायरी खोल के। तो वो विश्वंभर गोस्वामी जो थे वो इस भूमि पर, उनका जगह था, इधर आके भजन करते थे एकांत में। फिर प्रभुपाद जी जब आए वृंदावन में, तो प्रभुपाद जी का एक नियम था, अभी भी मतलब आप जिस जिस मंदिर में गए वो सब जगह प्रभुपाद जी का यही नियम था, वो मंगल आरती करते थे, एनीवे उसके पहले से पता थे, वो रात को 10 बजे उठते थे, दिन में 10 बजे नहीं, रात को 10 बजे, 2-3 घंटे ही सोते थे, 10-11 बजे उठ जाते थे। हाँ, रात भर किताब लिखते थे और 3:30-4 हो गए तो भक्तों को जगाते थे, सब सोए भक्तों को जगाते थे, फिर वो स्नान बांध करते थे भक्त लोग, फिर मंगल आरती होती थी, फिर मंगल आरती के बाद पूरा प्रभुपाद जी मंगल आरती देखते थे, अटेंड करते थे, फिर तुलसी आरती, नरसिंह आरती, फिर जब के समय वो वॉकिंग हो जाती थी, सब लोग भक्तों को लेकर वॉकिंग जाते थे, यहाँ भी गए, मुंबई गए, लंदन गए, अमेरिका गए, वृंदावन आए, सब जगह पर वो मॉर्निंग वॉक करते थे। तो यहाँ पर वो मॉर्निंग वॉक के लिए ऐसे परिक्रमा में आते थे चलते चलते, और ये भूमि में कुछ समय बिताकर वापस लौटते थे, और 7:15 के दर्शनार्थी को वहां पर वापस हाजिर हुआ करते थे। तो प्रभुपाद जी के जितने भी दिन यहां पर उन्होंने आए थे रहने के लिए, हर दिन उनके चरण कमल इस भूमि पर पड़े हुए हैं, ऐसी भूमि है ये। साथ में ये भूमि जो है, यहां पर कृष्ण बलराम खेलते हैं, पूरे वृंदावन में राधा कृष्ण का विग्रह है। इस्कॉन मंदिर में क्या विग्रह है? मेन बीच में कृष्ण बलराम। लोगों ने पूछा उनको ऐसे, क्यों आप तो वृंदावन में हो, राधा कृष्ण का विग्रह है हमारे पास, मेन विग्रह कृष्ण बलराम क्यों बनाया है? तो कहते ये तो खेलन भूमि है उनकी, रमन रेती, जिसमें वो रमन करते हैं। इस रेती मतलब क्या? जमुना जी की रेती है सब ये। अभी अस्पताल ये जो बनाए गए थे हमने 20-50 फुट तक खोला तो भी रेती रेती थी, सब जमुना जी का किनारा है ये, पूरी प्योर रेती, ब्रज रज। तो इस रेती में कृष्ण बलराम जी खेला करते थे दोस्तों के साथ, बहुत आनंद लेते थे उस समय। तो इसलिए उन्होंने कृष्ण बलराम का विग्रह स्थापन किया। फिर यथावकाश एक माता जी थी जिसका नाम था अर्चा विग्रह देवीदासी, उसका नाम था एंजेल, इंग्लिश में नाम था एंजेल, साउथ अफ्रीका में थी वो, बहुत बड़ी कलाकार थी और बहुत फेमस थी। जैसे होते ना फिल्म स्टार लोग होते ना, आपसे अपनी कौन कौन है ना फिल्म स्टार, वैसे वो थी वहाँ की कलाकार, और बहुत अमीर थी, बहुत मशहूर थी। उसके जीवन में परिवर्तन आया, वो हरे कृष्णा में भक्त बनी, फिर थोड़े बुजुर्ग हो गई, फिर उन्होंने गिरिराज महाराज से दीक्षा लिया, हमारे परम पूज्य गिरिराज महाराज, वो प्रभुपाद जी के प्रमुख शिष्यों में थे, और उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत प्रचार किया, तो उधर उनका संपर्क हुआ और उन्होंने उनको दीक्षा दिया। यथावकाश वो बुजुर्ग हो गई, बहुत उम्र वाली हो गई, मतलब गुरु जी से उनके शरीर की उम्र ज़्यादा थी, तो उनको कैंसर हो गया। उन्होंने उसके पहले उनको ब्रज में श्रद्धा थी, तो ब्रज में उन्होंने घर लिया था, इधर परिक्रमा रास्ते पर घर है उनका, अभी भी है, तो कभी कभी आके रहती थी। जब लास्ट स्टेज में कैंसर हुआ ना, तो उसका तो मन लगा कि अरे अभी तो वृंदावन जाना चाहिए, अभी वहीं पर जाके मरना चाहिए, तो वो अपने बंगले में आई, छोटा सा बंगला है लेकिन अपना खुद का घर है, बिल्डिंग नहीं, फ्लैट नहीं है, उधर आ गई वो रहने लगी। तो वो इतनी अच्छी भक्त थी, मशहूर तो थी पहले से, और भक्त बनने के बाद भी भक्त के रूप में भी मशहूर थी अर्चा विग्रह देवीदासी। तो उनको मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े भक्त आते थे, जैसे भक्ति भृंग गोविंद महाराज और गिरिराज महाराज तो आते ही थे गुरु के रूप में, बहुत सारे और भक्त आते थे, तमाल कृष्ण महाराज, ऐसे इस्कॉन के जो बड़े बड़े हस्तियाँ हैं वो उनको मिलने आते थे और उनको संग देती थी। उनके संग में उन्होंने बहुत प्रगति किया, बहुत आनंद का अनुभव किया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सत्संग तो प्राप्त हुआ उनको, लेकिन उनका ना शरीर में जो दर्द था ना, उसका इलाज नहीं हो पाया। जैसे अभी भारत कैसे यहाँ है, यहाँ भी उनको भक्त लोग मिलने आते हैं, लेकिन साथ साथ उनको फेंटेनिल भी दे रहे हैं आप, है ना, और सारी उल्टी की दवाई दे रहे हैं, आई भी दे रहे हैं दवाई, जो भी कुछ जरूरत है, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, मेडिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं, केवल दर्द ही दही भोग नहीं रहे, वो दर्द का भी निवारण हो रहा है उनका, और शांति से वो जितना हो सके उतना भक्तों का संग का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वो अर्चा विग्रह माता जी, नो मेडिकल अटेंशन, नो मेडिकल सपोर्ट, नो दर्द निवारण, सोचो आप, इतना फेंटेनिल लगाने के बाद भी दर्द है उनको, कई लोगों को मैं मॉर्फिन देने के बाद भी दर्द होते रहता है, कितना भयंकर दर्द होगा सोचो आप, जो मॉर्फिन देने के बाद में आदमी एकदम ऐसा बेहोश हो जाएगा, इतनी पावरफुल दवा है वो, आईवी देने के बाद भी टकाटक जगे है और दर्द निवारण नहीं हो रहा है, इतना दर्द उनको होता था, तो सारा दर्द सहन किया उन्होंने, लेकिन सत्संग बहुत मिला उनको, बहुत आध्यात्मिक पोषण मिला उनको। तो ना उनके मन में ऐसा विचार आया था उस समय कि वृंदावन में ना ऐसा एक दवाखाना होना चाहिए जो ऐसे मरीजों को रखे और साथ साथ आध्यात्मिक उनको सत्संग मिले, उनको वहाँ पर दर्द की दवा भी मिले और कोई कष्ट हो तो जख्म का बैंडेज भी हो जाए, मतलब इन शॉर्ट मेडिकल सपोर्ट मिले उनको, हाँ, और मेडिकल सपोर्ट मिलके दर्द निवारण होके इत्मीनान से भगवान का ध्यान करते हुए चले जाएं। तो उन्होंने क्या नाम दिया उसको, किसको मालूम है क्या उन्होंने नाम दिया उस दवाखाने को जो होना चाहिए यहां पर? ये हमारे 15 नंबर को क्या नाम दिया है, 2 माले पे, बैक टू गॉड हेड क्लिनिक, ऐसा बताया उन्होंने, जिसको आज हम हॉस्पिस कहते हैं। ऐसा उन्होंने इच्छा प्रकट किया, एक के साथ नहीं, अपने गुरुजी के साथ प्रकट किया और बहुत महान सन्यासियों के साथ में वो प्रकट किया कि यहाँ पर वृंदावन में ऐसा एक दवाखाना होना चाहिए जिसमें मरणासन्न लोग लास्ट स्टेज में भी आएंगे ना तो उनको सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट के साथ वो इत्मीनान से भगवान के धाम में उनका ध्यान करते हुए चले जाएंगे। तो ये कभी हुआ, 94 में हुआ। आपको सुनकर बड़ा आनंद होगा और पता नहीं होगा आपको, अगले साल में माताजी जाकर 25 साल पूरे हो जाएंगे। अर्चा विग्रह माताजी जो हैं, जानू सप्तमी के दिन उनका देहांत हुआ था और 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो आज से 25 साल पहले उन्होंने ऐसा इच्छा प्रकट किया और वो गुजर गई, और वो जो गुजर गई ना वो ऐसे महान तरीके से गुजर गई जो हर एक व्यक्ति, छोटा सा भक्त हो या बड़ा भक्त हो या महान संत हो, सबकी ऐसी इच्छा होगी कि ऐसी मृत्यु होनी चाहिए मेरी। आप बता सकते हैं साहब सिंह, बताइए कि बढ़िया मृत्यु मतलब क्या होता है, बताओ। एक है दर्द ना हो, कष्ट ना हो, यस, भगवान का नाम सुनते हुए चले जाए। दूसरी बात और बताओ, वही ना, भगवान का नाम सुन रहे तो याद भी आ रही है। और बताओ, गीता की, भगवान की वाणी सुनने को मिले, और अकेले रहे कि चले जाए कि क्या? हाँ, भगवान की बात भी सुन रहे हैं, टेप रिकॉर्डर चल रहा है, दर्द भी नहीं हो रहा है, कोई डॉक्टर दवा भी देके गया है, लेकिन अकेले हैं, अकेले पड़े अपने घर पे और जा रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या है बताओ, चारों तरफ भक्त घिरे हों, वैसे कोई नए नए भक्त नहीं, बड़े महान संत घिरे हों, चारों तरफ से घिरे हो, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हो, गुरु जी की सानिध्य में। कितने लोगों की इच्छा है कि गुरु जी के सामने मृत्यु हो जाए? अभी हम लोग गुरु जी से बच्चे हैं इसलिए हम लोग तो गुरु जी के बाद ही जाएंगे, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो गुरु जी के होते हुए उनके हाथ का हाथ पकड़ के गए हुए हैं। हमारे गुरु भाई ऐसे लोग हैं, एक हमारे सो कृष्ण प्रभु हैं, ऐसा गुरु जी का हाथ पकड़ के विदा किया गुरु जी ने उनको। वो थे बच्चे 30 साल के और गुरु जी बुजुर्ग थे लेकिन वहाँ मौजूद थे। ऐसे कई लोग हैं भाग्यवान लोग, लेकिन सब लोगों को ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होता है। अगर आपकी उम्र गुरु जी से बड़ी होगी, समझो गुरु जी 35 साल के हैं और आप 65 साल के हो, तो आपको गुरु जी के साथ में मृत्यु हो सकती है। ये माता जी ऐसी भाग्यवान थी, उनके घर पे महान से महान सन्यासी गण बैठे हुए, ये माता जी है और विरक्त सन्यासी सामने बैठे हुए हैं, उनके गुरु जी सामने बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, और सबके सानिध्य में भगवान का नाम गूंजते हुए इन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन तब उनके गुरु जी के मन में ऐसी इच्छा हुई कि अरे अगर मेडिकल सपोर्ट होता तो और भी अच्छा होता इसके लिए। तो 94 से गिरिराज महाराज सोच रहे हैं कि होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन आसान काम नहीं है। बहुत साल बीत गए उसके अंदर, बहुत चिंतन में बीते, चर्चा में बीते, कुछ आशा की किरण नजर नहीं आई। उसके बाद में बहुत साल के बाद सोचा कि एक जमीन तो ले ले कम से कम, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। तो तभी ये विश्वंभर गोस्वामी महाराज के जो लड़के हैं पद्मनाभ गोस्वामी, हमारा उनका बड़ा प्रेम है उन परिवार का पूरा, तो गिरिराज महाराज का भी है, हमारे गुरु जी का भी है, हमारा भी है, तो उन्होंने फिर एक दिन बातचीत करके ये जमीन उनको दे दिया। तो सबसे पहले तो ऐसा विचार था कि इधर ना प्रभुपाद जी आया करते थे, इसलिए प्रभुपाद जी का क्या कहते हैं उसको, मेमोरियल, मतलब उनके स्मृति प्रत्यर्थ कुछ जगह बनाई जाए, उनके विषय में उनका बैठने का मूर्ति रखा जाए, उनका ऐसे कुछ कहते हैं म्यूजियम बनाया जाए, संग्रहालय बनाया जाए, ताकि लोग आके देखें प्रभुपाद जी क्या थे, कैसे थे। छोटा तो बनाया मंदिर में, देखा ना आपने, उनका कमरा बना के रखा है, उसके अंदर क्या क्या वस्तु उन्होंने इस्तेमाल किया, उनका डब्बा, उनका चमचा, उनका मसाले का कूटने का, उनका टिफिन, उनका कढ़ाई, सब कुछ है उधर, उनका तेल, उनका मृदंग, करताल, माला, जहाँ बैठते थे वो दरी और सब कुछ, उनका वो पैलेंक्वीन क्या पालकी सब था, सब रखा है उधर, संभाल के रखा है, बिस्तर बना के रखा है, वैसे के वैसे है, पुराना जैसे दिखता है। वैसे यहाँ पर भी बड़ा करने का विचार था, ऐसे ही बहुत विदेश में बना के रखा है, मैं जाके आया हूँ लॉस एंजलिस में, अमेरिका में, कई जगह पर उनका संग्रहालय बनाया है, आप देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको, उनकी बहुत चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं। तो वो मेमोरियल कुछ सफल नहीं हुआ, कुछ बनी नहीं बात। तब फिर गिरिराज महाराज ने बोला कि वो उधर हॉस्पिस बनाना चाहिए। तो गिरिराज महाराज ने काफ़ी साल तक प्रयास किया अपने ही प्रयास में इसको चालू करने का, बहुत डॉक्टरों को विदेश से यहाँ से वहाँ इकट्ठा किया, कुछ विदेशी नर्सों को इकट्ठा किया, क्योंकि प्रभुपाद जी की संस्था में प्रभुपाद जी की शिष्या भी नर्सेस थी, अभी डॉक्टर भी हैं, जर्मनी में कोई है, अलग अलग देश में बिखरे हुए हैं, उनको उन्होंने इकट्ठा करने का प्रयास किया। 98 में हमारा भक्ति विद्या हॉस्पिटल खुल गया बम्बई ना, तो वो सब हमारे हॉस्पिटल में भी आए देखने के लिए, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मेडिकल डिस्कस करने के लिए, वो सब कुछ किया उन्होंने हमारे हॉस्पिटल में। हमने कई लोगों को वहाँ पर रखा, उनको दिखाया सब कुछ, उन्होंने बहुत दिन रह के सब देखा, विचार किया, परामर्श किया, बहुत कुछ किया, लेकिन गए वापस आए, फिर नर्स आई, वो आया, लेकिन तो बात नहीं बनी कुछ, अच्छे नेक विचार लेके आए, अच्छा चर्चा हुआ, लेकिन कुछ अंजाम तक निकलने वाली बात नहीं हुई। फिर 8 साल प्रयास किया उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने हमारे जो गुरु जी है ना परम पूज्य राधानाथ महाराज, वो और गिरिराज महाराज जी अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे, मतलब बहुत उनका प्रेम है, तो अक्सर वो अमेरिका दौरे में गिरिराज महाराज के घर पे जाते हैं, जो लॉस वो कैलिफोर्निया में है, बहुत बीच में गांव है, बहुत कारपेंटीरिया नाम का, बहुत सुंदर उनका घर है उधर, मैं गया हूँ उधर पढ़ने को गया, तभी वो गया था। तो उनके घर में ना 3 दिन 3 रात हमारे गुरुदेव और गिरिराज महाराज का चर्चा हुआ कि हम लोग तो बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ यश नहीं आ रहा है, आप लोगों के शिष्यों ने तो 8 साल से अस्पताल चलाया है, 98 से 2006 तक, ये 2006 की बात है, चर्चा चल रही है, 8 साल आपने यशस्वी तरीके से अस्पताल चलाया है और बढ़ रहा है अस्पताल, तो आप लोगों को भी तजुर्बा भी हो गया है कि अस्पताल चलाना कैसे होता है, आपके शिष्य लोग अभी ट्रेंड हो गए, उनको पता है, थोड़े नोक झोंक उनकी हो गई है शुरुआत में, कठिनाई आ गई है, सब कुछ पार करके अभी अस्पताल बहुत धूमधाम से चल रहा है, भक्तों की सेवा भी हो रही है, बाहर के लोगों की भी सेवा हो रही है, नाम भी हो रहा है, यश मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, यशस्वी हो रहा है प्रोजेक्ट, तो क्यों ना आप लोगों का ही सिस्टम में इसको चलाया जाए, आप लोग उसको ले लो। तो 3 दिन 3 रात वहाँ पर चर्चा हुई, वहाँ से हवाई जहाज पकड़ा गुरु जी ने, सीधे बम्बई आए, बम्बई आए सीधे बैग रखा, सीधे भक्ति विद्यांत हॉस्पिटल में आए, मुझे अभी भी वो दिन याद है, सुबह सुबह आए 10 बजे और प्रार्थना हुई मंदिर में हमारे अस्पताल में, उसके बाद गुरु जी सबको मंदिर में बुलाया, आ जाओ सब, तो सब जितने सीनियर थे सबको बुलाया, मैं था उसमें, माधवानंद प्रभु थे, डॉक्टर संखे, डॉक्टर राठौड़ थे, डॉक्टर दलाल थे, डॉक्टर बी सी शाह थे, सबको इकट्ठा किया, बोला, बहुत देर समझाया कि आप लोगों ने 8 साल तक अच्छा सेवा किया है, भगवान की भावना को समझते हुए रखते हुए वातावरण बनाते हुए 8 साल सेवा किया है, अभी प्रभुपाद जी आपको एक और विशेष सेवा दे रहे हैं, क्या आप तैयार हो लेने के लिए? ठीक है, बोलिए क्या क्या सेवा है? उन्होंने कहा वृंदावन में मरते हुए लोगों की सेवा करना है, चाहे ब्रजवासी हो या इस्कॉन के संत हो, सब लोग अभी लास्ट में वृंदावन में आके छोड़ना चाहते हैं शरीर, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, डर लगता है यहाँ पर कैसे रहेंगे, गर्मी में सर्दी में कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं, दवा नहीं, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता, तो ऐसा सुविधा खड़ा करना है कि यहाँ पर आके लोगों को अंतिम समय पर साथ मिल सकता है, सहारा मिल सकता है, भगवान की भावना मिल सकती है। तो हमने कहा गुरु जी आपकी इच्छा है तो हम लोग ले लेंगे उसको, तो गुरु जी ने कहा हाँ मेरी इच्छा है कि आप लोग उसको भी स्वीकार करो, हमारा भाग्य है कि हमारे ओर वो चलते आया है, हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं था लेकिन हमारी ओर सेवा चलते आ रही है। तो फिर वो जगह जो है ना आपकी, जो आज जब बैठे हम लोग यहाँ पर, वो भक्ति विद्यांत अस्पताल के नाम हो गई, ट्रांसफर कर दिया ट्रस्ट को। तब मैं 2006 में यहाँ पर इसी ये बारिश के महीने के आसपास में जगह देखने के लिए आया था, तो उस समय राधानाथ स्वामी महाराज और अभिराम प्रभु प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, योगेश्वर प्रभु जो हमारे महाराज जी के किताब के प्रकाशक हैं मंडला पब्लिकेशन, वो थे, वो कल दोपहर शाम को देखो एक प्रभु जी आए थे, भूरीजन प्रभु, उनको मिलने आए थे ना कल शाम को, वो भी गुरु हैं स्वयं, वो भूरीजन प्रभु थे, ऐसे 7-8 लोग थे, फिर वो तितिक्षवा कारुण का प्रभु जो MVT के अधिकारी थे वो भी थे, और विशेष बात यह है कि ये जगह ऐसे ही थी पहले से, इस्कॉन के नाम हो गई थी, और ये जगह पर जो कुआं था इससे जमीन के अंदर से पानी हमारे MVT में जाया करता था, यहाँ से पाइप निकाल के MVT में वाटर सप्लाई होता था। तो वो प्रभु जी भी आए थे, हमने जगह को छानबीन किया, कम से कम 30-35 पेड़ थे इसमें, बड़े बड़े मोटे मोटे एकदम पुराने, जैसे 75 साल 80 साल पुराने थे। तो सबकी एक बात हो गई उस समय कि कोई पेड़ काटना नहीं चाहिए, तो एक प्लान बना था उसका। हमने उन्हें उसको देखा, जमीन बहुत अच्छी लगी और हमने काम करने का प्लानिंग किया, डिजाइन बनाया। तो डिजाइन में ऐसे 4-5-6 पेड़ काट कर बिल्डिंग बनने का प्लानिंग किया था। तो जब हमने देखा, हमने कहा ये तो पेड़ तो ब्रज के नहीं काटने चाहिए, क्या कारण है बताइए, ब्रज के पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? दाल दाल और पाते पाते पे राधे राधे, यहाँ पर तो राधा रानी का ही स्वरूप है सब पेड़, और क्या कारण है उसका? और क्या पेड़ का स्वरूप क्या है? एक तो राधा रानी स्वयं है, और क्या है? हाँ, साधु लोग भी यहाँ पर पेड़ बनकर भजन करते हैं। साधु लोग है ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें अगले जन्म में यहाँ पर का पेड़ बनने का मौका मिले, कल्प वृक्ष बने हम लोग यहाँ के। और तीसरा कारण है कल्प वृक्ष, यानी कि गौलोक धाम के वृक्ष है ना, वो सब इच्छा पूरी करते हैं, वो ये पेड़ है यहाँ के। तीन कारण है उसके, तो तीनों तरफ से उनको काटना नहीं चाहिए। तो हम लोग ने उस समय ना, मेरे अभी भी याद है, कुछ लाख एक्स्ट्रा खर्च किए डिजाइन चेंज करने के लिए। इसलिए हमारा बिल्डिंग कैसा, देखो ऐसा घूम के जा रहा है, ऐसा होना मुमकिन था ना वो, लेकिन ऐसा घूम के जा रहा है ऐसे वो। जहाँ पर हम लोग उधर से आते हैं ना, हमारे कमरे से इधर आते हैं, तो कहाँ से आते, गार्डन से आते ना, वो कैसा ऐसा गोल है ना, वो गोल ऐसा, क्योंकि उधर अभी तक तो पेड़ है ना, अभी वही पेड़ के लिए उसको बचाने के लिए ऐसे घुमा के बिल्डिंग बनाया, दो चार रूम कैंसिल कर दिए उसके, और डिजाइन चेंज करने के लिए दिल्ली वाले आर्किटेक्ट ने कुछ लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए उसके फीस के रूप में। लेकिन सब लोग का निर्णय था कि कुछ भी हो जाए पेड़ बचना चाहिए। फिर वो बिल्डिंग बांधने का काम शुरू हो गया। हमारे गुरुजी इतने बुद्धिमान हैं, उनको पता था कि अस्पताल का एक भाव होता है। अस्पताल में क्या होता है, लोग आते हैं, इलाज करते हैं और चले जाते हैं, अच्छा होके चले जाते हैं ना, पेड़े बांटते जाते वक्त बख्शीश देते हैं कुछ सबको। लेकिन हॉस्पिस में कोई आता है तो पता है उसको कि हमको जाना है, ये बीमारी में ठीक नहीं होने वाले हैं, जिएंगे कुछ दिन लेकिन वो ये बीमारी में ही मरना है, ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली, बीमारी ले जाएगी हमको। तो भाव अलग होता है यहाँ पर। तो जानते थे कि अस्पताल के अगर व्यवस्थापक यहाँ पर आके बैठ गए तो अस्पताल के भाव में इसको चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे और डॉक्टर संख्या हमारे जो हैं उनको बोला कि आप विदेश में जाकर इसकी पढ़ाई करो ठीक से, ताकि आपको इसका जो मैनेजमेंट का भाव है वो समझ में आएगा कि क्या करना है। यहाँ पर पूरी सोच अलग है, हम लोग वहाँ चलाते हैं उसकी सोच अलग सोच है और यहाँ की सोच पूरी अलग है हमारी। तो हमने जाकर वहाँ पर बहुत महीने खर्च किए, पढ़ाई किया, उसका फेलोशिप का डिग्री लिया। और कभी हुआ जब ये इसका डिज़ाइन बन रहा था, अभी तक तो कुछ काम नहीं शुरू हुआ है, उसके पहले ही डॉक्टर को भी तय करके उधर भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, ताकि बेस्ट तरीका हो। फिर यहाँ पर काम शुरू हुआ, 2006 में काम शुरू हुआ इसका, 6, 7, 7, 8, 9 और 10 चार साल लगे उसको बनने में, और बहुत उथल पुथल हुआ बनते समय, आपको क्या बताऊँ। मैं हर महीने दो बार आता था इधर, हर स्थिति को देखा है, कंस्ट्रक्शन की स्थिति में, खुदाई हुआ भी देखा हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा यात्रा लेके आता था ना, तो यात्रा को लेकर मैं वो गड्ढा देखने को भी आता था लोग गड्ढा खोद कर उसका काम कर रहे हैं, हमारी यात्रा आके देख रही है, फिर बस फोटो भी है, नर्तकी माता जी है खड़ी उसके अंदर, कुर्वे जी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, और मैं यात्रा दिखा रहा हूँ लोगों को, ये जगह क्या है उसका वर्णन कर रहा हूँ, उसे फोटोग्राफ भी है। तो खुदाई से लेकर 20-25 फीट 30 भी गए तो भी मट्टी 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 थी ब्रजरज। फिर वो हमने कुछ गोनी में भर के इकट्ठा की थी, पता नहीं अभी कहाँ रखी उसको, क्योंकि इतनी अंदर की रज शुद्ध रज कहाँ मिलेगी, एक कंकड़ नहीं था उसके अंदर, एक कंकड़ ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। मुलायम पाउडर जैसी होता ना, अपना फेस पाउडर लगाता ना पाउडर, उतनी मुलायम रज थी वो, ऐसी अनोखी रज थी। अभी तो पूरा सीमेंट वीमेंट पत्थर पत्थर मिक्स होता है ऊपर के, उस समय तो इतनी अच्छी जमीन थी। 2010 तक ये काम चलता रहा, कई कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गए, सबने कुछ ने चोरी किया, किसने क्या किया, किसने गलत बांधा, किसने खोखला बांधा, किसने गड्ढा कर दिया, किसने क्या क्या किया, जो काम बम्बई में एक साल में हो सकता है, ये 4 साल लगे, कितने कॉन्ट्रैक्टर चेंज करने पड़े, क्योंकि जो आया है वो हर एक आदमी चीटर, डिज़ाइन समझता ही नहीं उसको, कहीं गलत जगह बना देता है, बनाया तो खोखला बना देता है, उसके अंदर बराबर माल मिक्स नहीं करता है, उसमें खाता है, इसमें चोरी करता है, उसमें ये करता है, उसमें झूठा बिल लगाता है, ऐसे कितने सारे संकट आए उसके अंदर। उस बीच हमारी पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गई, डॉक्टर की पढ़ाई भी पूरी हो गई जो यहाँ पर आने वाला था, तो हमने ना उधर क्या था नाम उसका, क्या 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 नहीं वो जगह कौन सी, जगह का नाम क्या था, मधुबन कॉलोनी, और क्या नाम था उसका, हाँ हाँ वो मधुबन कॉलोनी में VIPC वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेटिव केयर, एक बंगला लिया किसी का और 5 बेड वाला हॉस्पिस खोला, याद है ना आपको, उधर आके कथा करता था छोटी जगह पे बैठ के। 2008 में जनवरी में शुरू किया उसको, 2008 में, और 5 मरीज वहाँ भर्ती करते थे हम लोग उस समय, और वो बहुत सारी नर्सेस थी उस समय, उनको बॉम्बे जाकर ट्रेनिंग दिया था हम लोगों ने, भक्ति विधान में जाकर 5 महीने रुकाया था उधर, गिरिराज महाराज भी उनको मिले थे, राधानाथ महाराज भी मिले थे, हर हमारे बड़े बड़े सत्संग में उनको लेके गए हम लोग, 2-3 लड़कियाँ थी और 2 लड़के थे उसके अंदर, अभी कोई नर्स नहीं बचा उसके अंदर का, 5 लोगों से 5ों ऐसा उनको फूल की तरह रखा, फूल की तरह, जैसे हमारे VIP जितने जितने बड़े बड़े सत्संग थे वो सब सब उसको लेके गए, उसके फोटो भी मेरे पास में हैं, वो बड़े बड़े स्वामियों से मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं कि आप बड़ी सेवा करने जा रहे हो, हाँ तो आपको सब जगह पर सत्संग मिलने के लिए लेके गए उनको। फिर 2000 हमने 8 से लेकर 10 तक वहाँ पर सेवा किया, और 2010 में जनवरी 15 में वहाँ से हमने शिफ्ट किया इधर, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी रेडी हो गई थी, काफ़ी काम बाकी था लेकिन ऊपर का काम छोड़ दिया, नीचे सब चालू कर दिया, और फिर वो काम चलता रहा, मरीज यहाँ पर भर्ती होने लगे वहाँ से, वहाँ पर भी कुछ 400 से 500 लोग हमारे अंदर सेवा में भगवान के धाम जा चुके थे यहाँ आने के पहले ही, फिर यहाँ आए हम लोग, फिर 15 जनवरी से लेकर 26 अगस्त तक सब चलता रहा, और मैं मुझे याद है मैं महीने में 2 बार आया करता था हर समय, देखभाल करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, इंडक्शन करने के लिए, बहुत सारा चीज़, स्पिरिचुअल कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, क्या क्या करता था मैं। तो उसके बाद में मैं 8 दिन के 15 दिन रहने को आया इधर अगस्त महीने में, वो पूरा तैयारी किया उद्घाटन का, क्या पूरा बंद करके AC वैसे लगाया था पूरा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और बड़े बड़े सन्यासी आए थे उसके अंदर, इतना सुंदर सेरेमनी हुआ था 2010 में 26 अगस्त को, बहुत सुंदर, गोपाल कृष्ण महाराज, मित्र गिरिराज महाराज, हमारे गुरुदेव आ नहीं पाए उस समय, विदेश में थे, उन्होंने कहा कि मेरे इंतज़ार मत करो, कर दो शुरू उसको, अच्छा काम बहुत देर से और करना नहीं चाहिए, ऐसे करके बहुत सुंदर सेरेमनी हुआ था, बहुत कारपेट लगाया था इधर, सबको सब घुमाया दिखाया, और बहुत लोगों ने भाषण दिया, आशीर्वाद दिए उसमें, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। तो उसके बाद में हॉस्पिस 26 अगस्त को शुरू हुआ, और आज तक इस हॉस्पिस में कितने हजारों लोगों को हमने होम केयर में सेवा दिया, कितने सैकड़ों लोगों को यहाँ पर सेवा दिया, और अभी कितने लोगों का अभी आज तक देहांत हो गया हमारे यहाँ पर, कुछ आइडिया आपको? हाँ, यहाँ पर हमारे केयर के अंडर कितने लोगों का देहांत हो गया है, ये ढूंढ के निकलना जरूरी है बहुत। डॉक्टर अवनीश को पता है इसका नंबर क्या है, मेरे विचार से, हाँ मेरा विचार से 1500 के आसपास लोग हमारे निगरानी में शरीर छोड़ चुके हैं, दर्दविहीन, दर्द रहित अवस्था में शांति से अपना शरीर छोड़ चुके हैं, और कई प्रकार के अद्भुत अनुभव यहाँ पर हुए, कई प्रकार के अद्भुत 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 हस्तियाँ यहाँ पर आई हैं, और कई आचारों आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। तो ये जो एक तो इतिहास की बात हुई, इतिहास जो अभी नए नए आए उनको पता नहीं होगा, लेकिन सार क्या है इस चीज़ का, आप लोगों को कितना समझ में आया मैं कुछ जानना चाहता हूँ, कि आप लोगों को हॉस्पिस का मतलब एक वाक्य में बता सकते हैं कि आपके हॉस्पिस का मतलब क्या, किसने कहा, किसने क्या, करुणा, इन्होंने कहा, और आपने कहा अंतिम यात्रा में आपका साथी। दोनों बात सही है, और किसी को बोलना है कुछ? हॉस्पिस संस्था में जुड़े हुए जो सफाई कर्मचारी है, जो चाल वाहन चलाता है, या जो व्यवस्थापन देख रहा है, जो डॉक्टर है, वो नर्स है, उनके अंदर एक चीज कॉमन होनी चाहिए, वो है करुणा। भले आप डॉक्टर नहीं हो, लेकिन आप वो मरीज को ले जा रहे हो जो मरने वाला है ना। सिक्योरिटी, क्या काम है सिक्योरिटी का हमारे अस्पताल में? क्या काम है? हाँ, पहरा देते वो नहीं, अंदर आने वाले व्यक्ति को देखते हैं वो कैसा है, वो जैसा देख के तय करते हैं कि इसको व्हीलचेयर जरूरी है कि ट्रॉली जरूरी है। और इमरजेंसी पहचानते हैं और पहचान के तुरंत भागते हैं उसको लेकर, या तो व्हीलचेयर या तो ट्रॉली, और ऐसा भागते हैं ना कि कैजुअल्टी तक भागते हैं, इमरजेंसी में भागते हैं, डॉक्टर के सुपुर्द करते हैं, फिर चल के आराम से लौट के आते हैं। तो वो केवल पहरा नहीं दे रहे हैं, अस्पताल का क्या भाव है वो उसको सीने में लेकर चल रहे हैं, भले वो सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। रसोईया है वो, तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो मरीज जो यहाँ पर इलाज करने आया है उसके लिए खाना बना रहा है, उसको मालूम है कि ये घर का खाना बनाने ऐसा काम नहीं है, ये तो मरीज के लिए गिन चुन के बनाना पड़ता है। तो हर प्रकार के लोग, सफाई कर्मचारी है, जो नर्स है, जो पानी देने वाले, जो पॉट देने वाले हैं, सब लोग ये जानते हैं इस भाव को कि मरीज यहाँ पर मरने के लिए आया है। अंतिम स्थिति में आदमी बहुत असहाय होता है, कितना भी बड़ा आदमी होगा ना, कितना बड़ा संत होगा या कितना बड़ा प्रधानमंत्री भी होगा, अभी अटल बिहारी जब गए अभी निकल कर, हाँ, अंतिम क्षण में क्या थे वो? असहाय थे वो, उनका यश कीर्ति बहुत था, लेकिन यश कीर्ति का कोई लाभ हो गया उनको अंतिम मरने के समय? तो असहाय थे। जो प्रेम उन्होंने लोगों को दिया था वो प्रेम ही उनको काम आया एंड में, सबने प्रेम दिया उनको एंड में। वैसे यहाँ पर क्या होता है भाई, आपने बहुत पुण्य कमाया होगा, यहाँ पर पहुंचे तो सब लोग आपको आकर कीर्तन सुनाएंगे, कान में भगवान का भजन सुनाएंगे, दर्द निवारण करेंगे, कितनी आपकी सेवा करेंगे ताकि आप शांति से भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के पास चले जाएं। यहाँ पर आना बड़े भाग्य की बात है। मैं भी, मेरा भी अंतिम स्टॉप यही है, बात याद रखना, मैं भी यहाँ पर काम दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, लेकिन मेरा भी लास्ट स्टॉप यही है, मुझे भी यही आना है। क्योंकि पता है क्या बोलते हैं हमारे जो हॉस्पिस की जो क्या कहते हैं ऐतिहासिक डॉक्टर थी ना, सिसिली सॉन्डर्स नाम था उसका, जिसने हॉस्पिस की स्थापना किया, वो क्या कहती है मालूम है? वो कहती है, अभी बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, कि जो सिस्टम हम लोग बनाते हैं उस सिस्टम में ही हम मरते हैं, हमारी मृत्यु उस सिस्टम में ही होती है। मतलब अगर आपने सिस्टम बनाया कि माँ बाप का देखभाल नहीं किया, उनका दुर्लक्ष कर दिया, उनका ध्यान नहीं दिया, तो वैसे ही दुर्लक्ष होते हुए आप भी गुजर जाएंगे, आपके बेटे भी आपको नहीं देखेंगे। मतलब आपने सिस्टम क्या बनाया, माँ बाप का देखभाल नहीं करना, ये सिस्टम आपने बनाया, उसी सिस्टम में आप मरोगे। और सिस्टम बनाया आपने कि भाई बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, सबको देखभाल करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनका कचरा नहीं करना चाहिए, उनको अपमानजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए, उनको प्रेम से उनको देखभाल करना चाहिए, उन्होंने हमको गोद में खिलाया था, माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा था, इतना कष्ट उठाया हमारे लिए, हमने उनको मुंह पर भी उल्टी किया था तभी भी कभी हमको मारा नहीं उन्होंने, कितना कष्ट सहन किया, रात भर दस्त किया वो भी निकाला था, मुंह में उल्टी किया वो भी निकाला था, खाते वक्त मुंह में लात मारा था वो भी सहन किया। ये सब ध्यान रखते हुए अगर वो बुढ़े हो गए, अभी हमारे बच्चे जैसे बन गए वो, तो उनकी देखभाल करने का सिस्टम आपने अगर बनाया अपने जिंदगी में, तो वही सिस्टम आपको अंतिम समय में काम आएगा और उसी आदरपूर्ण सेवापूर्ण स्थिति में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो कितना बड़े वाक्य बताया कि जो सिस्टम हम लोग तैयार करते हैं अपने जीवन में, उसी सिस्टम में हम लोग मरते हैं, हमारी मृत्यु उसी सिस्टम में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, यू डाई इन द सिस्टम दैट यू क्रिएट। तो अगर हम लोग सब लोग ये बात समझते हैं कि मरीज हमारे मुंह को ताकते हुए यहां पर आ रहा है, अरे ये लोग सब दशरथ, ये सब मिलके मेरी सेवा करेंगे और हमने सेवा दिया उनको, तो हमारा जब अंतिम समय आएगा तो और कोई राम आएगा हमारी सेवा करने के लिए। समझ में आया आपको? मेरा तो ये विश्वास है कि अगर आपने दिल से यहाँ पर मरीजों का अंतिम समय पर असहाय अवस्था में जब है वो, तो आपने सेवा किया है, और आपके मृत्यु के समय आप टिम्बकटू में रहेंगे। टिम्बकटू की तरह मालूम है आपको? मुझे भी मालूम नहीं। टिम्बकटू का मतलब क्या होता है? अनजान जगह, जहाँ पर कोई गया नहीं आज तक। तो टिम्बकटू में भी अगर आपकी मृत्यु होने का संभावना होगी तो वहां पर भगवान किसी देवदूत को भेजेंगे आपकी देखभाल करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने सैकड़ों लोगों को यहां पर देखभाल दिया है, मरते समय सबसे असहाय अवस्था में आप लोगों ने उनको हाथ दिया है, उनका साथ दिया है, तो भगवान कैसे भूल सकते हैं आपको? उनकी याद दिलाकर आपने लोगों को विदा किया है और आपका अंतिम समय भगवान कैसे भूल सकते हैं आपको? इसलिए हम आपको हमेशा आपके हृदय के जमीर को पुकारते हैं कि एक नौकरी के रूप में काम मत करो, ये काम बहुत बढ़िया काम है, ऐसा काम है कि पगार तो एक बात है इसकी, लेकिन ये काम ऐसा उच्च काम है कि भगवान का ध्यान भी उस पर आकर्षित करता है, ये भगवान को खींच लेता है, कौन है वो यहाँ का आदमी जो मेरे जीव की सेवा कर रहा है, मुझे मेरी याद दिला रहा है उसको, जो मेरा मिशन है, मैं चाहता हूँ हर जीव मेरा ध्यान करते हुए मेरे मुझ तक पहुँचे, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये भगवान का काम है, भगवान चाहते हैं कि यहाँ का हर जीव उनकी याद करके उनके पास पहुँच जाए, और वो याद कराने के लिए अगर आप सहायता कर रहे हो, माता जी मंदिर लेके जा रही है, आप उसको पॉट दे रहे हो, आप उसको दवाई दे रहे हो, आप उसको आईवी लगा रहे हो, आप उसको विजिट दे रहे हो, आप उसको दर्द में दवाई दे रहे हो, उल्टी की दवाई दे रहे हो, आप उसका बिल बना रहे हो, आप उसको मैनेजमेंट कर रहे हो, क्या भगवान की किताब पढ़ रहे हो, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, घर जाने के लिए होम केयर के लिए ड्राइविंग कर रहे हो, कितना काम, दवाई दे रहे हो, दिल्ली से जाके मॉर्फिन लेके आ रहे हो, उधर से आके फेंटेनिल लेके आ रहे हो, वो लाइसेंस का नियम पालन कर रहे हो, ये सारा काम जरूरी है कि नहीं? प्लम्बिंग अगर पेशेंट का अंदर बंद हो गया तो आपको वो खोलना पड़ेगा ना, तो प्लम्बर का काम भी जरूरी है, बिजली का काम भी जरूरी है, हरे कृष्ण महामंत्र बंद हो गया तो कंप्यूटर रिपेयर करना भी जरूरी है, ये सारा काम किस लिए हो रहा है? ताकि मरीज को भगवान की याद आए, और भगवान की याद करते करते वो बीते लास्ट वाले दिन बिताएं, और भगवान की याद करते करते ही यहाँ से भगवत धाम चले जाएं। और ये सब हम लोग इंग्लैंड अमेरिका में कर रहे हैं, साक्षात भगवान के घर में कर रहे हैं, वृंदावन धाम में कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी बोलते ना, चार चांद है ये अपनी सेवा के ऊपर, है ना? सेवा का स्थान भी इंपॉर्टेंट है, बाबा आप सेवा कर रहे हो, लेकिन सेवा किधर कर रहे हो? जहाँ भगवान खेलते हैं, जिसमें अपनी चरण स्पर्श किया है इस भूमि में, यहाँ पर भगवान की भूमि पर आप बैठकर सेवा कर रहे हो, इतना परम भाग्य के लिए कितना पुण्य किया होगा आपने अपने पिछले जन्मों में, आज आपको याद नहीं वो सब, वो भगवान के हिसाब में लिखा हुआ है सब, आपने क्या क्या किया है, इसलिए आपको यहाँ मौका दिया है। कभी कभी हम लोग पुराने पुण्य को नहीं मालूम, इसलिए यहाँ पर आके गलतियाँ करते रहते हैं, वो भी भगवान लिखते रहते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, सब लिखते हैं भगवान, लेकिन भाग्य तो है ना, इधर ही रख के आपको इधर ही सेवा दिया है, रोटी भी इधर का खिला रहे हैं, जो भूमि पर खुद चले हैं वो भूमि पर जो गेहूं निकल रहा है उसी की रोटी आप खा रहे हो। मेरे गुरु जी ने मुझे बताया बात ये, मैं कभी भूलता नहीं उसको, ऐसा मुझे दे रहे थे, मैंने उनको परोसा, उन्होंने खाया, फिर मैं एंड में खा रहा था, उनके परोसने होने के बाद हाथ पाथ धोया, उन्हें बैठ गए और मैं खा रहा था, तो गुरु जी आग्रह कर रहे हैं, अरे विश्वरूप ले लो एक और रोटी ले लो, मैंने महाराज पेट भर गया अभी मैंने खा लिया, बोलते ये रोटी जानते हो, ये रोटी उस खेत से आई है जिस पे भगवान ने लीला किया है, इस खेत में आए हैं, उस खेत से आए जहाँ पर मोर ने टट्टी किया है, बंदर ने टट्टी किया है, गैया ने गोबर डाला है अपना, हाँ ब्रजवासी लोगों ने अपने पैर रखकर उसको सींचा है, जानते हो रोटी का महत्व कितना है, इसमें कितना पुण्य और कितनी पवित्रता छुपी हुई है, लो एक को खाओ, तो मैंने वो भी खाया। इतना वर्णन किया रोटी का तो क्या है बताओ आप। जो मोर प्याओ व्याओ करता है उसका भी टट्टी इसके गिरा हुआ है, उसका भी खाद है इसके अंदर, कृष्ण की प्रिय गाय जो है वो बैल इस पे चरे हुए है, उसका अपना गोमूत्र और गोबर डाला हुआ है, ये ऐसी पवित्र भूमि में बना हुआ रोटी है, वो गेहूं है वो ब्रज के अट्टी में पिसा हुआ है चक्की में, फिर ब्रजवासी लोगों ने अपने प्रेम से, क्योंकि वो हमारे बरसाने वाले माता जी ने बना के दिया था हमको जाते समय, बोले ब्रजवासी माता लक्ष्मी मैया ने अपने प्रेम से बनाया है, खाओ विश्वरूप खाओ, तो हमने खाया उसको, इतना पेट फूल गया लेकिन खाया। तात्पर्य क्या है कि आप भी वही रोटी खा रहे हो जो यहाँ पर भगवान ने नृत्य किया है इसके ऊपर, है ना, उसी की रोटी का आप खा रहे हो। चलो कोई किसी के पास एक रोटी किसी के पास चार रोटी है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कर्म के हिसाब से सबको मिल रहा है, भगवान खिला रहे हैं सबको, ये भाग्य की बात है बहुत। और एक भी ऐसा है कि ना ब्रज में कोई काम करना आसान नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है उसका, कुछ भी करो यात्रा निकालो उसमें बहुत कठिनाई आएगी आपको, और कहीं पिकनिक करने जाओ तो महाबलेश्वर जाओ कोई इतना तकलीफ नहीं होगा आपको, बोले ब्रज में करो ना, खांसी आती है किसी को, दस्त लगते हैं, अभी देखो मैं बेचारे कुछ लोगों को यात्रा करने लेके आया था, क्या बताऊं आपको, सारे के सारे दस्त में भाग रहे हैं और एक डॉक्टर बचा उसमें से, तो वो सबका इलाज कर रहा है, वो कथा भी कर रहा है इलाज भी कर रहा है। और बाकी तो लोग कैसे गोली खा के ठीक हो गए। एक मैया सबसे बड़ी, जो सबसे बुजुर्ग, सबसे आदरणीय, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव थी, वो तो बेचारी एक रात में ही उसमें 30 दस्त किए। तो उनको यहाँ पर भक्ति विधान में आके भर्ती किया ना परसों, मैंने गए हफ्ते में 24 घंटा उनका सेवा किया। तो आसान नहीं है, उनको इच्छा था कि सब ब्रज का जगह देखना चाहिए। हमने 38 जगह देखा 5 दिन में, बोलो सोच सकते हैं। और 38 जगह पे मैंने कथा भी किया, भले 10 मिनट का हो 15 मिनट का हो, सब चीज का महात्म्य बताया। 5 दिन में 38 जगह गए हम लोग, बोलो आनंद आया बहुत। लेकिन दस्त भी लग रहे साथ में। माता जी बोल रही, कल रात को 15 हो गए। बोले ठीक है, ये लावा दवा ले लो, अब सब जाने का समय हो गया, उनको विदा करने का समय है। बोला ईश्वरू मैं तो खड़ी नहीं हो सकती। बोले क्या हो गया माता जी, आप तो कल को दवा दे, ठीक थे आप, कल रात को मैं 25 बार गई, अब मुझे उठने को भी नहीं हो रहा है, अब मुझे कुछ आई भी लगा दो यहीं पर, अब बाद में एयरपोर्ट छोड़ दो। मैं बोला माता जी कैसे कर सकते हैं ऐसे, अब दस चालू है आपके, वो कैसे फ्लाइट में बैठेंगे आप, चलो भक्ति विधान चलो। यहाँ आके फ्लाइट कैंसिल टिकट करवाया और सेवा करवाया इधर। तात्पर्य क्या है, आसान नहीं है, कुछ भी करो यहाँ पर, आप कुछ भी बनाओ प्रोजेक्ट, बहुत कठिनाई आएगी। हाँ वर्षा आती है तो तूफान के रूप में आती है कभी, ऐसे हल्की हल्की आती नहीं कभी, और बरसात बंद हो गई तो ऐसी कड़क धूप गिरती है कि क्या बताऊं, इतना पसीना आता है अगस्त महीने में कि क्या बताऊं। हर महीने में अलग कीटक है यहाँ पर, मार्च में इतना बड़ा हरा रंग का कीटक है, तो इसमें इतना कीटक है, उसमें अलग कीटक है, पहचानते भी नहीं हम मुंबई में उसको, ऐसे बड़े बड़े कीटक आते हैं। अभी कभी यही बीमारी है, कभी चिकनगुनिया की बीमारी चल रही है, कभी डेंगू चल रहा है, कभी ये चल रहा है, ये ढेर सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं होल सेल में। कोई व्यक्ति गिर रहा है तो उसकी आँख ही कट रही है, पंखे का पत्ता लग से आँख कटी हुई मरीज देखा है मैंने। कोई लड़की खीर में गिरती है, खीर बन रही है तो लड़की खेलते खेलते जाती है, वो खीर में गिर जाती है, बोलो 24 दिन तक कोमा में है। ऐसी भयंकर तकलीफ कष्ट मैंने यहाँ पर देखा हुआ है। इस जगह पे रहना आसान नहीं है। 7 दिन यात्रा कर सकते हैं आप, बहुत धूमधाम, मतलब क्या ब्रज, ऐसा लगता है कि यहीं रह जाए। कितने लोग बोलते प्रभु जी लगता है कि यहीं पर एक फ्लैट लेके यहीं पर अपना घर बसा लें। मैं बोला बसा लो, बाद में मैं सपोर्ट के लिए आऊंगा, आपको चिंता मत करना। क्योंकि यात्रा में सारी व्यवस्था, बस बस खाना पीना, महाप्रसाद, दर्शन, सुंदर कथाएं, भक्तों का संग, ऐसा मतलब क्या क्रीम ही खा रहे, क्रीम क्रीम खाते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आके रहना मतलब क्या, दूध निकाल रहे हैं। वहां से शुरू होती है ना, क्रीम तो बाद में मिलती है। तो एक बार रहने को आ गए ना, तो फिर ब्रज आपके साथ में एकदम अलग ही रूप दिखा देते हैं। ये हमारे डॉक्टर अवनीश की पत्नी है ना, जब नए नए आए थे ना, 3 बार टाइफाइड हुआ बेचारे को 6 महीने के अंदर, बोलो। एक बार ऐसा खड़ी खड़ी ऐसा पाँव टेढ़ा हो गया, तो ऐसा पाँव टेढ़ा हो गया 3 महीने प्लास्टर लगा के खड़ी है, मोच आ गई पाँव में। अभी इतना आ गया तो क्या 3 दिन में ठीक होता है बॉम्बे में, यहाँ पर ऐसा हो गया तो 3 महीने तक लगड़ा रही है वो। 3 बार टाइफाइड हो गया, प्रभु जी को भी कई बार कुछ कुछ हो गया। मैंने कहा वो क्या कहते ना, वो सब भगवान किले को ठोक रहे हैं, तो भगवान किले को ठोक रहे तो तकलीफ होता है, किला फिट बैठ गया ना बाद में फिर सब काम आसान हो जाता है। लेकिन जब ठोकने का समय आता है ना, शुरुआत में किला बड़ा, तो बहुत बड़ा कष्ट होता है। तो यहाँ पर कुछ भी आसान नहीं है, यहाँ पर मरना भी आसान नहीं है, बहुत पुण्य लगते हैं उसके लिए। अरे हमारे कितने संत ऐसे हैं जो चाहते थे कि यहाँ पर आके, ये बन गया ना अभी फर्स्ट क्लास बन गया, इतना महल जैसा बना दिया है, घर जैसा बना दिया, इधर ऐसे कमरे कहीं मिलते क्या, पूरे ब्रज में ढूंढ के दिखाओ मुझे, इस साइज के कमरे मिलते तो बताओ। अरे ये कमरा जो है ना, वही एक होटल का रूम होता है, उसके अंदर 2 बिस्तर डाल के आप लोगों को रह सकते हैं, टॉयलेट बंद कर दो, 2 डाल दो बिस्तर और बोलो 500 रुपया पर दिन, आ जाएंगे लोग रहने के लिए। इतना बड़ा कमरा है वो, बाथरूम नाम का कमरा जो है ना वो बहुत बड़ा है। ऐसा बना के रखा, लोगों की इच्छा थी कि आ जाए यहाँ पर, लेकिन वो ऐसी स्थिति में हो गए कि वो आ ही नहीं पाए परदेश से। तय किया कि अभी चलो भाई उधर ही रह जाए। बड़े बड़े महाराज हमारे एकदम संत, इतने विद्वान संत थे हमारे वो, लेकिन वो रशिया में फंस गए, कुछ अमेरिका में फिलाडेल्फिया में फंस गए, कुछ कैलिफोर्निया में फंस गए, कुछ इंग्लैंड में ही रह गए। मतलब उधर से डॉक्टर बोल रहा है नहीं आप सफ़र नहीं कर सकते भाई आपको, तो उन्होंने कहा कि भाई हवाई जहाज में मरने के बदले में घर में मरना अच्छा है। कोई गारंटी नहीं कि ब्रज तक पहुंच जाएंगे, ब्रज में मरेंगे तो अच्छा है, लेकिन हवाई जहाज में मृत्यु हो गई तो। और ये हकीकत है भाई, देवे भक्ति वेदांत अस्पताल में हवाई जहाज में मरे हुए लोगों के मुर्दे भी आए हुए हैं, फॉरेनर लोगों के, मैंने हैंडल किए खुद, आए थे भारत में आकर कुछ करने के लिए, लेकिन हवाई जहाज में डेथ हो गई, तो बेहोश करके उनको दिखाकर लाया कि भाई मरे नहीं, बेहोश है करके, और भक्ति विधान में डिक्लेयर किया कि डेथ हो गई, ताकि उनका पोस्टमार्टम ना हो और आगे का वो एम्बेसी का काम तकलीफ वाला ना हो, इसलिए उनको बेहोश बेहोश करके ही लाया और बेहोश ही दिखाया, और बेहोश करके बाद में दवा भी दिखाया, और बाद में एक घंटे के बाद डेथ डिक्लेयर किया, क्योंकि वो एम्बेसी का नियम होता है ना, बहुत सारा दूतावास का, कितने 50 नियम होते हैं उनके, 15-15 दिन महीना महीना तक बॉडी सड़ती है मॉर्चूरी में, ऐसे कड़क नियम होते हैं उनके, वो नियम को पार करने के लिए ऐसे ही दिखाया कि भाई यहाँ पर आए और इधर गुजर गए, तो ठीक है। तो ऐसे ब्रज में पहुंचना मुश्किल है, कितने लोग चाहते हुए भी, हमको कितना मेल लिखा उन्होंने, हम आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, फिर पता चला कि गुजर गए उधर ही, सारी व्यवस्था करके रेडी हम लोग यहाँ पर, आए किधर, पहुंचे नहीं, तो यहाँ पर है ना, वो कितने लोग छांट के यहाँ पर पहुंचते हैं, चाहने वाले बहुत हैं, पहुंचने वाले उसका कुछ 10% लोग पहुंचते हैं इधर, दिल्ली से भी नहीं आते, बोलो चलो वो, ये बहुत बड़ी बात है, हाँ दिल्ली से लखनऊ से, अरे हम इधर से नहीं, इंडिया में ही पहुंच नहीं पाते, यहाँ पर पहुंचने के लिए बहुत भाग्य की बात है, और हम लोग यहाँ पहुंचे हुए ऑलरेडी इधर पहुंच गए, कई बार आते हैं, आप लोग यहाँ ही रह रहे हो, समझो कितने भाग्य को समझो कि यहाँ कितना बड़ा भाग्य है यहाँ पर आना, इसलिए यहाँ पर रहकर गलती मत करना कभी। कल मैंने बताया था आपको ना, यहाँ पर जो आकर पाप करता है वो क्या बनता है, क्या बताया मैंने कल आपको, वो सुअर गधा बंदर ऐसे भयंकर योनि प्राप्त करता है, और वो कौन से पाप है यहाँ पर करने पर ऐसा होता है, कौन सी चीजें है वो करने से ऐसा होता है बताओ, अरे पता होना चाहिए ना, कहीं कर बैठेंगे आप तो जाएंगे फिर बंदर के रूप में, बताओ, यहां पर आकर व्यभिचार करना, हाँ पत्नी की सलावा और किसी औरत का संग करना, यहां पर आके जुआ खेलना, यहां पर आकर नशा करना, चरस गांजा शुगर क्या बोलते हैं ब्राउन शुगर गर्द अफीम ऐसे नशा करना, शराब की नशा करना, और यहां पर आकर मांसाहार करना, यहां पर आकर झूठ बोलना, किसी के घर में आग लगा देना, किसी का खून कर देना, डकैती करना, ऐसे भयंकर 7 प्रकार के पाप हैं, ऐसे पाप आकर यहां पर करेंगे ना तो निश्चित रूप से यहां पर ऐसा जन्म मिलेगा। अभी ब्रज तो बड़ा महान भूमि है, यहां पर जो आएगा ना एक बार वो दोबारा और कहीं जन्म नहीं लेगा, यहीं पर जन्म लेगा, लेकिन कैसा जन्म लेगा, आपने सुअर को देखा है, ऐसा लोग मारते हैं उसको डंडे के समान में, गटर में पड़ा रहता है वो, फिर भी लोग उनको डांटते रहते हैं और पटकते रहते हैं उनको। बंदर का देखा आपने, बंदर का देखा गर्मी में कितना कष्ट पाता है वो, मोरों को फाड़ के खाते हैं लोग, इतना दिमाग खराब होता है उनको, बरसाने में देखा है मैंने, मोरों को फाड़ के खाते हैं, वैसे नहीं उनका आहार नहीं है वो, लेकिन दिमाग गर्मी में इतना परेशान होता है ना, उनके लिए कोई ऐसी नहीं है, कोई कमरा नहीं है ऐसे बैठकर ठंड में आराम से बैठ के भजन कर रहे हैं बंदर महाराज। तो फिर अगले जन्म में बहुत कष्ट, आपने देखा है लूड़े लंगड़े कुत्ता भी गटर में डोलते रहते हैं, गटर भी वो सुअर भी दो पैर से लूला है, गटर में भोजन ढूंढते रहता है, गर्मी सर्दी का कष्ट भोगता है। तो ये सारे पाप यहाँ पर मति भ्रष्ट कर जाएंगे ना तो यहाँ पर बहुत कष्ट है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी भाग्य प्राप्त है और सेवा मिल रही है संतों की, यहाँ पर कौन ब्रजवासी आते हैं वो भी संत ही है, भगवान के विशेष भक्त हैं, और बाकी लोग जो हमारे इस्कॉन के भक्त हैं वो तो अपना जीवन पूरा परिवर्तन करके चरण शरणागत होकर आए हुए हैं, अपना जीवन पूरा शुद्ध भक्ति में डाल रहे हैं, दोनों तरफ से आपके लाभ ही लाभ हैं। तो क्या बताया मैंने आपको, बेस लाइन क्या है यहाँ का, करुणा, दर्द होने वाले व्यक्ति के प्रति करुणा, उसका दर्द मिट जाए, कहीं ना कहीं मेरे सहारे मेरे होने से उनका दर्द निवारण हो जाए और वो दर्द रहित होकर भगवान का ध्यान कर सके, और ये कोशिश करते 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 अंतिम समय में दर्द रहित भगवान का ध्यान हो जाए, उसका बेड़ा पार हो जाए उसका, ये प्रयास है हमारा। कितने सफल है कितने नहीं है वो भगवान ही जानते हैं, प्रयास तो हम करते हैं और करते रहना चाहिए। मेरे लिए भी यहाँ का मैनेजमेंट कोई खास काम नहीं, मैं आकर यहाँ पर मैं गुलाब जामुन नहीं खाता हूँ, कितनी समस्याओं का मीटिंग करना पड़ता है मुझे, इसका समाधान उसका समाधान, ये हो रहा है वो हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, वो मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, वो ये कष्ट है वो कष्ट है, कितनी तकलीफ तकलीफ है, लेकिन फिर भी मैं आते हुए दिखाई देता आपको, क्यों, क्योंकि मैं अपने आप को भाग्य समझता हूँ, क्योंकि कठिन सेवाएं सब लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग को मौका मिला है, हमको करना चाहिए। सब लोग के सहारे, सब लोगों के गोद में बड़ी बड़ी महान सेवाएं नहीं आती है, वो हमको प्राप्त हो गए तो हम क्यों छोड़े उसको। कठिन हो तो क्या हुआ, कठिन क्या नहीं है जिंदगी बताओ? शादी करना आसान है क्या? परिवार चलाना आसान है बताओ? पढ़ाई करना आसान है? पैसे कमाना आसान है? घर बनाना आसान है? गाड़ी लेना आसान है? बताओ कौन सा चीज़ आसान है दुनिया में? तो अगर भगवान की सेवा मिली, वो कष्ट वाली मिली, तो वो अच्छा ही है। कष्ट तो यहाँ तो नहीं तो वहाँ भोगना ही है आपको, तो कष्ट भगवान की सेवा में भोगा तो अच्छा है ना, नहीं तो वहाँ पर भी कष्ट भोगना ही है, तो वहाँ पर भी लात गिरने वाली है, माया देने वाली है, यहाँ पर भगवान आपका इलाज करेंगे, अच्छी बात है। ये सोचकर भगवान का भक्त जो है वो पीछे नहीं हटता है। सोचा कि भगवान को छोड़कर वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी माया के लात तो खानी है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ये जगह के जो ट्रस्टी थे ना पहले वाले, अभिराम प्रभु थे, हाँ, उन्होंने MVT नाम का चीज़ है ना, MVT उन्होंने बनाया है, बहुत बढ़िया। तो वो जब प्रभुपाद जी लास्ट स्टेज में थे ना, तो इधर ही थे वृंदावन में, जो कमरा बनाया ना उधर थे वो। तो ये महाराज कैसे अभी हिलने को भी नहीं हो रहा है, इससे भी जीर्ण हो गए थे प्रभुपाद जी, ऐसे मतलब कुछ नहीं कर सकते, उनके पलके भी लोग ऐसे उठाते थे, ऐसे प्रभुपाद जी देखो कौन मिलने आया है, ऐसे पलके उठाकर उनको दिखा देते और छोड़ देते, पलके गिर जाती थी, इतने कमजोर हो गए थे वो। तो वो बिस्तर में ही टट्टी पेशाब करते थे, तो ये अभिराम प्रभु उनको गोद में लेकर उनको ना टट्टी पेशाब साफ करते थे, और प्रभुपाद जी पूरे होश में थे, ऐसे नहीं कि बेहोश थे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे बहुत कष्ट होता होगा ना आपको ये सब करते हुए, मेरा टट्टी पेशाब निकाल रहे हो, कोई पसंदीदा काम तो नहीं है ना ये, कोई गुलाब की खुशबू तो नहीं खा रहे वो बैठ के। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जब वो टट्टी साफ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे साफ करके ऐसे फेंक रहे हैं, प्रभुपाद जी का सर इधर है, ऐसे निकाल के पट्टी साफ कर रहे हैं कि टिश्यू लेकर साफ कर रहे हैं। तब प्रभुपाद जी उनको बोल रहे हैं उनके गोद में कि ये करते हुए तुमको बहुत कष्ट होता होगा ना। तो अभिराम प्रभु ने क्या उत्तर दिया उनको, बोले प्रभुपाद जी ये कष्ट करना अच्छा है हमारे लिए, नहीं तो जाकर माया में जाकर वहां पर जाकर वही तो करना है ना, व्यभिचार करेंगे, मांसाहार करेंगे, जुआ खेलेंगे, कोई गंदा काम करेंगे, नशा करेंगे, तो कितनी मार पड़ेगी माया से, कितने कर्म के फल मिलेंगे हमको। लेकिन आपकी ऐसी निम्न सेवा करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा, भले नाक में बदबू आएगी लेकिन हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, आपकी कृपा मिलेगी, आपके संत की कृपा मिलेगी, हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। और कितने ना आंखों से आंसू लेकर उन्होंने मुझे ये कहानी बताई है कि मेरा कितना भाग्य था कि प्रभुपाद जी के टट्टी साफ करने का मुझे मौका मिला, उस अवस्था में जब वो हिल भी सकते नहीं थे, जिन्होंने जगत का उद्धार किया, हम जैसे गधे लोगों को कीचड़ में से उठाकर भक्त बनाया, इंसान बनाया, इंसान जानवर के सर से गटर से उठाकर बनाया, जीवन भर इतने बुढ़ापे में यात्रा किया और हम लोग का उद्धार किया, अभी वो जीवन के अंतिम समय पर ऐसे बिस्तर में पड़े हैं, उनकी टट्टी साफ करने का मौका मुझे मिला, कितनी बड़ी भाग्य की बात है। इतने हजारों शिष्य थे उनके और हर एक व्यक्ति उत्सुक था कि मुझे साफ करने को मिले, ऐसा नहीं था कि कोई था ही नहीं, वो भी देख रहा है खुद कोई करेगा क्या, बोर हो गया मैं, कोई कल करेगा, मैंने कल किया था, आप करोगे क्या आज, ऐसे ही लाइन लगी थी उधर, और ये फिर भी मुझे भाग्य मिल रहा है इतना लाइन लगते हुए भी, तो ये मेरा भाग्य है, मेरे लिए खिटखिट नहीं है, ये मेरे लिए भाग्य है कि मुझे ये इतना काम प्रभुपाद जी का करने का मौका मिला। तो वैसा ही भाव हमारा होना चाहिए, क्योंकि जो कठिन सेवा करता है उसको बहुत मीठे फल मिलते हैं, सामान्य सेवा करता है सामान्य फल मिलते हैं उसको, जो कठिन सेवा करता है बहुत दिल से करता है, भाव से करता है, उसको भगवान कभी भूलते नहीं, कभी नहीं भूलते। जिसने जैसे कि आपका समझो आपका आपका बालक है, हाँ, आपका बालक कभी बीमार पड़ गया, कष्ट में आ गया और किसी ने उसका सेवा किया उस समय, जैसे मेरा भाई है, कल मुझे उससे फोन किया था, क्योंकि वो मेरे भाई का बेटा था ना, छोटा था, तब उसके ना गर्दन का ये है ना मनका C2 टूट गया था। बालक का गर्दन का मनका टूटना मतलब उसके मौत के बराबर है, वैसे कहता ना टक टक ऐसा आवाज आता था उसका, और कभी कुछ और बड़ा टक आवाज आ गया तो वो हरी बोल थैंक यू, ऐसे भयंकर अवस्था में मेरे भाई ना, उसकी भाभी मेरी भाभी और भाई रोते रोते मेरे घर पे आए थे, और मैंने हमारे डॉक्टरों को मिलकर अच्छा उसका इलाज किया, बालक को ठीक किया, आज वो बालक इंजीनियर डबल इंजीनियरिंग MBA करके अमेरिका में रहता है, लेकिन उसको अभी भी याद है, वो जो मुझे कल फोन करके बोला कि मैं कभी भूल नहीं सकता कि तुमने मेरे बालक को बचाया, एक ही बालक है। तो जैसे अभी कितने साल हो गए, वो तो 5 साल का था, अभी तो शादी होके उसको बच्चा होने का समय आ गया, अभी 35 साल का हो गया वो। लेकिन 30 साल पहले एक मरने वाले बालक को बचा के जिंदगी दिया, वो मेरे भाई को अभी भी याद है, मुझे अभी कल परसों वृंदावन ने फोन करके वो बता रहे थे मुझे। तो अगर एक दुनिया के इंसान को अपने बालक के ऊपर किया हुआ कृपा उपकार याद है, तो भगवान कितने महान होंगे। अगर भगवान के महान भक्त जो है उसको आपने कष्ट में अगर यहाँ पर सहारा दिया है, तो भगवान आपको भूल नहीं सकते कभी। जैसे मेरे भाई अपने पुत्र पर किया हुआ उपकार नहीं भूल सकता है, वैसे भगवान अपने संत पर अंतिम समय पर कष्ट के समय किया हुआ उपकार कभी नहीं भूलेंगे। और वो सारा आपके खाते में जमा हो रहा है, सारा पुण्य जो आप कर रहे हो। पगार तो अलग बात है, ड्यूटी विटी सब वो अटेंडेंस फटेंडेंस वो सब बाजू में रखो उसको। वो जिस भाव से आप कर रहे हो ना, उसकी पगार कोई दे सकता नहीं आपको, हम नहीं दे सकते। जो भाव से यहाँ सेवा कर रहा है, वो भाव के लिए हमारे पास कोई है ही नहीं आपको देने के लिए। इतनी अमूल्य चीज है वो जो आप दे रहे हो। बाकी आपका ड्यूटी है 8 से 8, 6 से 8, जो भी है काम यहाँ का, उसके लिए पगार मिल रहा है, लेकिन भाव के लिए कोई तनख्वाह नहीं दे सकता है। वो तनख्वाह एक ही है, कृपा भगवान की और संतों की कृपा, जो आपको अंतिम समय में तारेगी। वो रुपया नहीं तारेगा, आप अभी रुपया यहाँ पर लेके जाएंगे, पगार ले गए, पगार बढ़ेगा, वो लेके जाएंगे, और रुपया आपको अंतिम समय में नहीं तार सकता है। अंतिम समय पे कोई पगार तार नहीं सकता है आपको, चाहे लाखों लोगों की पगार हो, करोड़ों की पगार हो आपके, लेकिन वो आपको अंतिम समय तार नहीं सकती है। अंतिम समय पर आपको वही चीज तारेगी जो आपने संतों की सेवा किया है, दिल से किया है, भाव से किया है, प्रेम से किया है, निस्वार्थ रूप से किया है, निरपेक्ष भावना से किया है, वही आपको अंतिम समय काम आएगा। वही आपकी पूंजी है, वही आपका इनकम है, वही आपका स्टॉक है जो आप अंतिम समय में निकाल सकते हो। यमदूत भी भागेगा उसको देख के, इतना पूंजी इसके पास है तो मैं यहां पर कैसे हाथ लगाऊंगा। यमदूत दूर से भागेगा आपको देख के, आएगा नहीं पास में आपके। भगवान के दूत आएंगे और आप लोगों को, हम लोगों को ले जाएंगे। इसलिए लगे हुए हैं, कष्ट हो रहा है, तकलीफ है, फिर भी लगे क्यों हैं? यही हमारा टिकट है, और टिकट निकालने का काम कर रहे हैं हम लोग यहां पर। ऐसे करते रहेंगे तो टिकट निकलेगा हमारा, कन्फर्म हो जाएगा, तो निश्चिंत हो जाएगी। ऐसी भूमि है ये। तो भक्ति वेदांत अस्पताल में सब काम होता है, उसमें एक हिस्सा है हॉस्पिस, वही हिस्सा बड़ा होकर यहाँ प्रस्तुत हो गया है। समझ में आता है? बहुत प्रकार के डिपार्टमेंट है वहाँ पर, एक डिपार्टमेंट उसमें से हॉस्पिस का डिपार्टमेंट है, छोटा सा हिस्सा है, कुछ 45 डिपार्टमेंट है उसके अंदर, एक डिपार्टमेंट वो भी चल रहा है उधर, उधर भी हॉस्पिस है, लेकिन वही हिस्सा बड़ा होकर रमन रीति में प्रकट हो गया है, भक्ति वेदांत हॉस्पिस। केवल वही काम यहाँ पर होता है, बाकी सारे काम नहीं होते। और आते कौन है यहाँ पर? कोई फिल्म स्टार कभी भी नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का। कोई फिल्म स्टार जो व्यभिचारी है, 50 शादी कर चुका है, वो इधर मरने के लिए कभी नहीं आ सकता, उसका भाग्य ही नहीं तो कैसे आएगा वो? यहाँ पर कौन आएगा मरने के लिए, बताओ आप? वही आदमी आएगा जो पुण्यवान है, जिसका नसीब में यहाँ पर मरना लिखा है, वही आएगा। तो आपके गोद में वही महान जीव ही आएगा, दिखने को कितना भी गंदा होगा, लेकिन यहाँ पर पहुँचने वाला जीव, मरने के लिए आया हुआ जीव, वो महान जीव ही होगा। सामान्य जीव यहाँ पर पहुंच ही नहीं सकता है, अच्छे अच्छे जीव भी नहीं पहुंच सकते हैं, तो ये फिल्म स्टार लोगों का क्या कहना? यहाँ पॉलिटिशियन नहीं आ सकता, यहाँ फिल्म स्टार नहीं आ सकता, यहाँ क्रिकेटर नहीं आ सकता, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता जो आपको, आप जिसको पूछते हैं दिन रात हरी बोल करते ना उनके लिए, क्रिकेटर को सेंचुरी मारा तो ताली बजाते हैं, वो सब लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पाते, वो मुंबई नगरी माया नगरी में मरेंगे पाप का फल भोगते हुए। यहाँ पर वही आएगा जो पुण्यवान है, भगवान का विशेष भक्त जो है, वही यहाँ पर आपके गोद में आएगा और प्राण छोड़ेगा यहाँ पर। और भगवान कैसे, क्या लिखा है यहाँ? भगवान खेलते हैं ना, खाली खेलते नहीं भगवान यहाँ पर, इस भूमि पर जो मरता है ना उसको खेल छोड़कर आके गले लगाते, समझो खेल रहे हैं वो खेलते खेलते खा रहे, कोई मर गया भक्ति हॉस्पिस में, हमारी रमन रीति में कोई मर रहा है, खेल बंद करके उसको गले लगा लेते हैं और ले जाते हैं अपने घर। शास्त्र में लिखा है ऐसे, कितनी बड़ी बात है, वो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा कैसे गले लगा रहे हैं उसको, लेकिन आपने गले लगाने के लिए उनको सौंप दिया उनके हाथ में, लो भाई दर्द रहित भी है, आपकी याद भी कर रहे हैं, ले लो उसको अपने गोद में। श्रद्धा है हमारी, ये विश्वास है कि यहाँ पर ऐसे होता है, ऐसी पावन भूमि है, इसलिए दिल से काम करो। और ऐसी अनंत क्या सालगिरह हम मनाएंगे, हर साल याद करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा लाखों का खर्चा करके बहुत बड़ा समारोह मनाएंगे, नहीं, ये समारोह दिल का समारोह है जिसमें हम लोग अपने क्या भाग्य है उसको याद करेंगे, आगे क्या भाग्य मिलेगा उसकी भी याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान से रखेंगे हमको सेवा दो, ऐसी बहुत कठिन सेवा है लेकिन हमें आपने चुना है इस सेवा करने के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपका, थैंक यू वेरी मच भगवान, आपने हमको यहाँ पर रखा, इतना कठिन सेवा क्यों नहीं हुआ आपने दिया, हम कठिन सेवा कर सकते हैं ये विश्वास आपने हम पर रखा है ना, कठिन सेवा किसको देते हैं, जो विश्वास लायक है ना भाई, ये व्यक्ति वो कर सकता है, बाकी तो किसी का काम नहीं, ये व्यक्ति कर सकता है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ये व्यक्ति के तो वो कठिन काम करेगा, उसमें शक्ति है उतनी, तो ये श्रद्धा भगवान आपने हम पर रखी, धन्यवाद है आपका, और श्रद्धा रखी आपने हम पर कि हम कर सकते हैं तो निभाने के लिए शक्ति भी देना आप, और देने वाले शक्ति भी आप ही हो, शक्ति भी देना, हमसे करवाना आपकी सेवा, कभी हमको मायूस मत होने देना, कभी हम जुदा ना हो जाए, हाँ कभी होता ना दिल मायूस हो जाता है कभी कभी, नहीं करना है अपने को, ऐसा ना हो जाए, सेवा बनी रहे, सेवा टिकी रहे, और हम आपके भक्तों की सेवा करते रहे, और अंतिम समय हम भी आपको याद करते करते ही उनके आपके धाम में जाएं। जय जय श्री राधे श्याम।